ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिताश्विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पुंगु मा मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासनगणा देवाय तस्मै नमः। अभी तक हमने बहुत सारे असुरों का वध और कुछ और लोगों का दमन और उद्धार के बारे में श्रवण किया। सबसे पहला हमने पूतना जो मिथ्या गुरु को सूचित करते हैं उनको श्रवण किया। उसके बाद शकटासुर जो हमारे अंदर जो भार उठा के जाने की प्रवृत्ति है पुराने गंदी आदतों की, ये उसको सूचित करते हैं शकटासुर। प्रणावर्त अहंकार जो विद्वत्ता से उत्पन्न अहंकार को सूचित करता है, भगवान ने उनको ये वध किया। और इसके बाद तृणावर्त के बाद हमने चर्चा किया किनका, नल कुबेर मणिग्रीव, किस प्रकार वो अहंकार जो ऐश्वर्य से उत्पन्न होता है उनको भगवान ने वध किया। उसके बाद अघासुर बकासुर और बकासुर का वध का हमने श्रवण किया, किस प्रकार भगवान ने बकासुर का वध किया। बकासुर जो है वो डुप्लिसिटी कूटनादि को सूचित करते हैं। उसके बाद अघासुर जो ईर्ष्या को सूचित करते हैं। और उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला का चर्चा किया, किस प्रकार ब्रह्मा जी का जो अनर्थ है हृदय में ज्ञान के प्रति कर्म के प्रति और ऐश्वर्य और माधुर्य के बीच में अंतर नहीं जानते हुए ऐश्वर्य को माधुर्य से श्रेष्ठ समझने के अनर्थ को सूचित करते हैं। और उसके बाद हम कालिया का दमन का चर्चा किए। तो आज हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट फायर यानी दावाग्नि, जंगल में जो वह दावाग्नि आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दो बार जंगल में दावाग्नि आई थी। एक तो जैसे भगवान ने कालिया को दमन किया, दमन करने के बाद इतना पूरा लीला इतना लंबा चला था भगवान का कालिया का दमन करने का, वो तब तक वो रात हो चुका था। सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि अगर रात हो गया है तो फिर इधर ही सो जाते हैं, और वो ऐसी जगह चुने जहां फिर से ये जो कालिया के द्वारा उत्पन्न हुआ जो विष है वो विष से थोड़ा दूर एक ऐसे स्थान चुने जहां विष का खतरा ना हो। और सारे ब्रजवासी सब सो गए और ये सोचते हुए कि हम कृष्ण को ऐसा संरक्षण करेंगे अगर एक कालिया या कालिया के और मित्र आए इधर असुर के रूप में, हम सब जाके उनको मारेंगे और उनको इनके साथ झगड़ा करेंगे, कृष्ण के साथ हम करेंगे। लेकिन रात हो गया, अचानक से रात के समय भयंकर सा एक आग आया, दावाग्नि आया, जंगल का अग्नि, क्योंकि वो समय ऐसा बोला जाता है कि समर यानी ग्रीष्म ऋतु था। समर को क्या बोलेंगे, और इसका गर्मी का मौसम, तो गर्मी का मौसम में उधर बहुत सारे सूखा पत्ता और सूखा पेड़ वगैरह थे। अस्तित्व में वृंदावन में कभी गर्मी पड़ता ही नहीं है, गर्मी जी वसंत ऋतु जैसा लगता है, लेकिन फिर भी वो कालिया का वो प्रभाव की वजह से कुछ उधर सूखे पत्ते सूखे कुछ पेड़ वगैरह थे, उसकी वजह से बहुत एक दावाग्नि आया। जैसे दावाग्नि आए सभी लोग भयभीत हो गए, भयभीत होके तुरंत कृष्ण का शरण में गए। तो कृष्ण का शरण में जाते वो कहे कृष्ण कृष्ण महाभागा, और साथ साथ बलराम जी को पुकारने लगे, हे बलराम जी हमका रक्षा करो। तो कृष्ण ने क्या किया, इन सब ब्रजवासियों का इस प्रकार की भयभीत अवस्था में देखे, उन्होंने जो सारा दावाग्नि है उनको अपने मुंह में उन्होंने पी लिया। तो ये कृष्ण किस प्रकार ये दावाग्नि को पीते हैं, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भक्त का कोई भक्त कृष्ण का शरण ग्रहण करता है तो ये वैष्णव समाज को हानि पहुंचाने वाले कुछ तत्व है, कुछ चीजें हैं, कुछ अनर्थ है, उनको कृष्ण नाश करते हैं। तो ऐसा क्या है, कौन सा चीज है जो वैष्णव समाज को हानि पहुंचाने वाला, ये चर्चा करने से पहले एक ये दावाग्नि कौन है उसके बारे में बोला जाता है कि सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि ये जो कालिया के मित्र था ये दावाग्नि, पहला दावाग्नि, और कुछ और लोग बोलते हैं कि कंस का एक अनुगामी था करके बोलते हैं, लेकिन जो भी है ये दावाग्नि कालिया दमन के बाद तुरंत उत्पन्न हुआ, तो उनको बहुत गुस्सा आया ये असुर जो दावाग्नि के रूप में आया। ये कालिया का मित्र होने कहते हैं मेरा मित्र का दमन किया गया था तो मैं स्वयं आके उनको फिर से मारने के लिए प्रयास करूंगा। तो ये वैष्णव समाज यानी सारे जितने ब्रजवासियों को एक ही साथ में सबको भस्म करने का योजना बनाया था दावाग्नि। ये क्या सूचित करता है, कौन से अनर्थ को सूचित करता है, वैष्णवों के बीच में अलग अलग मतभेद से उत्पन्न हुआ जो क्लेश है, जो झगड़ा है, वो सूचित करता है। या दो वैष्णवों के जो ग्रुप्स है, दो गुरु वर्ग के ग्रुप है, उन दोनों के बीच में जो युद्ध मतभेद है, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा है, उसके द्वारा उसको सूचित करता है। या कुछ लोग एक विग्रह का उपासना करते हैं, कोई और दूसरा विग्रह का उपासना करते हैं, तो एक दूसरे को निंदा करते हुए, एक दूसरे को ये करते हुए, आप हम आपसे श्रेष्ठ है, आप ऐसा करते ऐसा करते, कि दोनों के बीच में मतभेद है, उसको सूचित करता है, दोनों के बीच में क्लैशेस है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का कोई उनको नाश नहीं कर सकता है, लेकिन खतरा जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का बाहर की असुरी तत्वों से नहीं है, बल्कि अंदर ही से खतरा है। तो ये दावाग्नि वैष्णव समाज की खतरे से कैसे बचा जाए, उसके लिए एक शिक्षा है, किस प्रकार कृष्ण सहायता करते हैं वैष्णव समाज में क्लेशों से मुक्त हुआ जाए। ये खास करके क्लेश या मतभेद ये होता है वैष्णवों के बीच में। वैष्णवों के मतभेद, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनके बीच में जो मतभेद होता है, और मतभेद की वजह से बहिरंगिक तरीके से जो एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट होता है, चैतन्य भागवत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि ये जो एक बार नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इन दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ था, या इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के बोलते हैं कि आप देखो आप अद्वैत हो, अद्वैत सिद्धांत को पढ़ाते हो, मायावादी हो आप। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारा जातवाद का कुछ मालूम नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, इस प्रकार दोनों के बीच में झगड़ा होता है। या ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु देख के बहुत उनको आनंद मिल रहा था, लेकिन बाहर का जो ये इन दोनों की ऊंच पदवी को नहीं देखता है, ऊंच पदवी को नहीं जानते हुए, ऊंचे स्थिति को नहीं जानते हुए, कोई साधारण सा व्यक्ति नवदीक्षित भक्त सोच सकता है ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इन दोनों का मतभेद है, अभी क्या करूं मैं, किसका साइड लूं, ऐसा सोचना शुरू करता है। लेकिन इस भक्त को मालूम नहीं है कि ये जो मतभेद है वरिष्ठ वैष्णव में, ये मतभेद भगवान की सेवा के लिए होता है। बहिरंग रूप में ऐसा लग सकता है ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अस्तित्व में वैसा नहीं है। तो सबसे पहला ये बात ध्यानना चाहिए, जो वरिष्ठ वैष्णवों के बीच में मतभेद होता है उसकी वजह से बहिरंग कुछ झगड़ा जैसा लगता है, लेकिन अस्तित्व में वो झगड़ा नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा का एक अंग है। तो इसलिए भक्तों को किसी वैष्णव का पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं हम इस ग्रुप के हैं, हम वो ग्रुप के हैं, आप एक ग्रुप के हो, तो इस प्रकार का ये ग्रुपिज्म मेंटालिटी जो है उसके द्वारा हमारा भक्ति नाश होता है। भक्ति नाश नहीं होता, सारा समाज ही नाश हो जाता है, पूरा वैष्णव समाज ही नाश होता है, माहौल ही नाश हो जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर इसके ऊपर बहुत कड़क तरीके से बताते हैं कि उनके समय, भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर के समय गौड़ीय मठ का प्रचार भयंकर तरीके से चल रहा था। पूरा भारत में उन्होंने प्रचार किया था, 64 गौड़ीय मठों का स्थापना किए, उन्होंने हजारों शिष्यों को, हजारों लोगों को शिष्य बनाए भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, और उनके बहुत बड़े सन्यासी शिष्य भी थे। लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका बुढ़ापा वो आने वाला था, उस समय इतना क्लेश हो गया था गौड़ीय मठ के अंतर्गत कि श्री प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि आग जल बे, आग जल बे मतलब आग लग रहा है गौड़ीय मठ में, अभी तुम कुछ करो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी गौड़ीय मठ से अलग होकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किए, क्योंकि उधर इतना भयंकर सा क्लेश हो गया था शिष्यों के बीच में, वो झगड़ा करने लगे, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा, ये है मेरा, ये मेरे शिष्य है, ये मेरा सत्ता है। इतना भयंकर सा झगड़ा हुआ, जो गौड़ीय मठ 64 गौड़ीय मठ एक राज्य में इतना भयंकर सा प्रचार हो रहा था, अभी इतना टूट फूट के ऐसा हो गया, पूरा कोर्ट केस अभी तक चालू है। ये दावाग्नि है, दावाग्नि वजह से क्या हुआ, सब लोग मिलजुल के सेवा नहीं करते, वो सोचते हैं कि मेरा है, ये उसका है। तो बक्सियन ठाकुर बोलते हैं कि जो बाग बाजार मंदिर मैंने बनाया है, उसका जो ईंटे हैं एक एक रुपए में बेच दो और गरीबों में बांट दो, और हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको बक्सियन ठाकुर बोलते थे कि मुझे बरो नहीं चाहिए, भालो चाहिए, बरा मतलब बड़ा चीज नहीं चाहिए, मुझे भालो चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए। तो मठ में अगर एक आदमी भी रहेगा चलेगा, जो श्रद्धावान है और सिंसियर है और किसके अंदर कोई इस प्रकार का मतभेद की भावना नहीं है तो भी चलेगा, एक आदमी चलेगा। लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा मठ हमको नहीं चाहिए। तो ये बक्सियंस ठाकुर कहना है। और श्री प्रभुपाद जी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के अंत में, यानी जब उनका शरीर त्याग करे, तो उस समय शिष्यों को उन्होंने एक ही आखिरी उपदेश दिए थे कि प्लीज कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपना भक्ति में आगे बढ़ो, तो संस्था को आगे बढ़ाओ। तो वैष्णव समाज का संरक्षण जो है वैष्णव समाज के द्वारा ही हो सकता है, बाहर की तत्वों के, भौतिक तत्वों के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे कुछ भक्तों का ऐसा प्रयास करते हैं कि इस समाज में जो क्लेश हो रहे, कुछ वाद विवाद हो रहे, कुछ लोगों के बीच में मतभेद हो रहे, इसका जो सोल्यूशन है, इसका निराकरण है, वो कोई बाहर का एक कोई कोर्ट वाला जज है या कोई अन्य प्रकार के जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो सब आके करेंगे, वो सब निराकरण करेंगे। जो श्री प्रभुपाद जी ने संस्था बनाया ताकि वो सारा दुनिया का, सारा दुनिया का सबका प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन उन्होंने इसलिए ये संस्था को नहीं बनाया ताकि हमारी जो समस्या है वो समस्या का समाधान बाहर से किसी को लेके आए और कराए। इसलिए सबसे पहला निषेध किया जाता है, जो भक्त किसी के अंदर मतभेद होता है, वो मतभेद का निराकरण के लिए वो किसी और भौतिकवादी के पास जाना नहीं चाहिए। ये सबसे पहला रूल है हमारी संस्था में, हमारी ईबीसी में, क्योंकि ये मतभेद जो भी होता है, इधर ही कृष्ण के सहारे से, कृष्ण कीर्तन करने से, कृष्ण का शरण ग्रहण करने से ये मतभेद वो निकल जाता है। जैसे अंततः ये बात को जानना चाहिए, भले ही वैष्णव के बीच में मतभेद हो, वो दोनों का प्रयास क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बात को अगर ध्यान में रखें, कितना भी प्रकार के मतभेद भी क्यों न हो, ये सबका निराकरण हो सकता है। मुख्यतः मतभेद ये होता है कि ये हम ये वर्ग के हैं, हम ये डेटी को पूजा करते, ये विग्रह को पूजा करते, आप इस विग्रह को पूजा करते हो। इतना तक कि हमने ये भी सुना है श्री राधा गिरिधारी राधा माधव की, तो इतना तक हमने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे कुछ कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ ही नहीं पता नहीं इनको क्या बोला जाए, तो वो वैष्णवों से इतना द्वेष करते हैं मतभेद की वजह से कि वो धीरे धीरे से वैष्णवों से द्वेष करने की वजह से वो भगवान से भी द्वेष करने लग गए। ये निश्चित रूप में आएगा ही मन में, क्योंकि अस्तित्व में द्वेष जो है भगवान से हमने किया इसलिए भौतिक जगत में आए, तो वो निंदा करने लगे कुछ ऐसे वैष्णव जो एक मंदिर से जुड़े हुए थे और बोलते थे कि आप जो है आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप आपका जो झुंड में इस प्रकार होता है, हमारे पास देखो इतना अच्छा होता है, ऐसे 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 करते करते एक दो साल तक ऐसा बोलने लगे। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ वो इतना तक बोलने लगे, देखो हमारा जो विग्रह जो है, हम जिस विग्रह को पूजा करते हैं वो कितना सुंदर है, आपका विग्रह तो कुछ नहीं है आपका जो विग्रह है उनके अंदर जो कृष्ण का चेहरा उतना अच्छा नहीं है, हमारा जो है कितना सुंदर है। तो इस प्रकार वो सेवा आर्थ वगैरह का भी अपराध करने लगे तो ईर्ष्या को कंट्रोल करना, निंदा को कंट्रोल करना वो हमारी बस की बात नहीं, कृष्ण की बस की बात है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये सब जानते हुए, ये वैष्णव समाज के बीच में खतरे को जानते हुए हमको बहुत सावधानी से भक्ति में प्रगति करना चाहिए। और एक बड़ा खतरा ये है ये विग्रहों का झुंड, और दूसरा ये खतरा यह है कि हम एक गुरु के शिष्य है, आप दूसरे गुरु के शिष्य हो, तो ये दोनों के बीच में, दो गुरुओं के शिष्यों के झुंड के बीच में जो झगड़ा है, जो मतभेद है, ये भी संस्था को नाश कर सकता है। तो ये पहला फॉरेस्ट फायर दावाग्नि, अग्नि ऐसा चीज है एक बार आ गया तो पूरा समाज को भ्रष्ट कर सकता है। चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं कि तीन चीजों को तुरंत निराकरण करना चाहिए। एक है अग्नि, जैसे आग लग गया तो उनको ऐसा नहीं कि ठीक है बाद में उसको बुझाएंगे, नहीं, वो बाद में नहीं चलेगा। दूसरा है बीमारी, जैसे बीमारी होता है उसको तुरंत इलाज कराना चाहिए, नहीं तो सोचेगा ठीक है दो दिन के बाद देखूंगा, नहीं, दो दिन के बाद देखने को भी नहीं हो पाएगा, ऐसा हालत हो जाएगा। तो ये है। और दूसरा, तीसरा है कर्जा, ये कर्जे को तुरंत निराकरण करना चाहिए। कर्जा हो गया ठीक है बाद में भरेंगे उसका कर्जा, बाद में भरने लायक नहीं रहे, खुद को बेच बिकना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये तीन चीजों को जल्द से जल्द तुरंत ही इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो ये भी अग्नि जो है, ये पहला दावाग्नि, वो जहां जहां दिखाई पड़ता है, जिस भक्तों के हृदय में, जिस भक्तों के वर्ग में दिखाई पड़ता है, तुरंत उसको समाप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करेंगे, वो कृष्ण का सहारे से हम प्रयास कर सकते हैं। ये है पहला फॉरेस्ट फायर। इसके बाद भगवान के बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है, किस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों और उनके खुआरे ग्वाल बालों के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे। वृंदावन की जंगलों में जाते थे और जंगल की जो सुंदरता उसको सराहना करते थे कृष्ण और बलराम उनके सारे ग्वाल बालों के साथ। करते करते वो कभी कभी मेंढक जैसे कूदते थे और पूरा आनंदमय माहौल था, और उधर गर्मी का जरा सा भी असर नहीं था क्योंकि गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी वसंत ऋतु जैसा, स्प्रिंग जैसा दिखाई पड़ रहा था, और घास भी पूरा हरा रहता था और सारे जो पेड़ के जो पत्ते थे वो भी हरा दिखाई पड़ रहा था, गर्मी के मौसम कभी सुखा ही नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम अलग अलग खेल कूद में भाग लेते थे। तो एक दिन उनका खेल कूद में ऐसा खेल खेलने लगे, एक व्यक्ति छुप जाता था पेड़ के पीछे या कहीं और छुप जाता था, और दूसरे व्यक्ति को क्या कर उनको जाके ढूंढना पड़ता था। वैसे उन लोगों को दो टीम बनाए, एक कृष्ण एक टीम में थे और जो है बलराम एक टीम में थे। उस दिन एक ग्वाल बाल कोई जरूरी कारणवश वो घर में कुछ आवश्यक कुछ कार्य थे उनके, इसलिए आ नहीं पाए। तो प्रलंब असुर करके असुर था वो, उन्होंने क्या किया, ये अच्छा मौका करके उन्होंने ढूंढ के अपने आप को एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके वो झुंड में जुड़ गए। तो कृष्ण जो है पहचान गए, ये जो है एक ग्वाल बाल नहीं है, एक असुर है। तो इस रूप में वो कृष्ण की साइड में आ गए थे। तो प्रलंबासुर थोड़ा बुद्धिमान था, उन्होंने सोचा अभी कृष्ण इतने सारे असुरों को वध किए, कालिया का दमन किया, सब कुछ किया, तो बहुत शक्तिशाली लगता है कृष्ण, लेकिन अभी कृष्ण को मैं मारूंगा नहीं, अभी मैं बलराम को मारूंगा, देखता हूं बलराम के साथ थोड़ा सा कम से कम एक को तो मारूं, बाद में देखेंगे किस कृष्ण के बारे में। तो इसलिए कृष्ण के साइड में जुड़ गए। तो खेल कूद हुआ, तो बाद में ऐसा हुआ कि कृष्ण जो है वो उन साइड में हार गए। तो जो व्यक्ति हार जाता है, ऐसा नियम था कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो जीता हुआ टीम को, उनके कंधे को बिठाना होता है, बिठा के एक जगह से दूसरा जगह तक लेके जाना होता है। लेकिन साथ साथ में उनके जो बछड़े हैं, उनके जो गाय हैं, अभी तो कृष्ण गाय गाय चराने लेके जाते हैं, उनके गाय को भी चरते हुए लेके जाना है। ऐसा नहीं कि तुरंत लेके भाग के चला गया, तो उनको गायों को भी चरते चरते लेके जाना है। तो ऐसा तो कृष्ण का टीम हार गया, तो कृष्ण को श्री राम को उठा के जाना पड़ा। और कृष्ण के साइड में प्रलंबासुर था, तो प्रलंबासुर ने क्या किया, बलराम को कंधे के ऊपर उठाया। तो बलराम जी कंधे के ऊपर बैठे, बैठ के प्रलंबासुर बलराम जी को वो लेके लेके जा रहे थे। तो बलराम जी ने देखा क्या हो रहा है, ये मुझे तो खाई केवल इधर तक ही लेके जाना था, ये तो कहीं और दूर भी लेके जा रहा है, और भी कृष्ण और जितने ग्वाल बाल थे उनसे भी मुझे दूर लेके जा रहा है। तो जैसे बलराम जी इस प्रकार सोच रहे थे, उन्होंने देखा ये प्रलंबासुर का शरीर जो है बड़ा होने लगा। हाँ, क्योंकि बलराम जी सारा बल का स्रोत है, उनका भी शरीर बड़ा होने लगा और उनका भी शरीर बहुत भारी होने लगा। वो भारी शरीर को उठाने के लिए प्रलंबासुर का शरीर भी बड़ा होने लगा। जैसे प्रलंबासुर का शरीर बड़ा होने लगा, उनका जो शरीर इतना बड़ा हो गया, तो ऐसा वर्णन किया जाता है जिस प्रकार बादलों के ऊपर चांद होता है, उसी प्रकार ये प्रलंबासुर का शरीर घने बादल काले से दिखाई पड़ रहे थे और बलराम जी का शरीर गोरा है, वो चांद के बराबर थे। तो प्रलंबासुर के आंख बड़े बड़े लाल आंख थे और उनका जो मुकुट पहने थे वो सोने का मुकुट पहने थे। तो बलराम जी ने सोचा जरूर ये कुछ असुर है, तो उनको मुझे मारना है। तो बलराम जी ने तो वो सोच रहे थे, थोड़ा सा घबरा गए थे, क्या करूं क्या करूं। तब ऐसा वर्णन आता है कोई और पुराण में, कृष्ण ने बलराम जी को याद दिलाया उनके बल के बारे में। हे बलराम, तुम बलराम हो, सारे बल का स्रोत हो, तुम उनको मारो। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना मुक्का लगा के उनको पूरा सर के ऊपर मुक्का मारा। जैसे उन्होंने मारा, प्रलंबासुर खून को उन्होंने उल्टी किया और एकदम गिर पड़े और मर पड़े। तो जैसे प्रलंबासुर का मृत्यु हो गया, सारे जितने भी देवता लोग ऊपर से वो फूल बरसाने लगे और सभी लोग बलराम जी को वाहवाह करने लगे और उनको सराहना करने लगे प्रलंबासुर की मृत्यु की वजह से। तो प्रलंबासुर कौन से असुर को सूचित करता है, ये कौन है? प्रलंबासुर ऐसा बताया जाता है कि ये गर्ग संहिता में कहा गया है, विजय करके जो व्यक्ति था, जो गंधर्व हू हू करके गंधर्व था, उसका पुत्र है करके बोला जाता है। और कुबेर के द्वारा उनको शाप दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ पुष्पों को उनकी कुबेर की गार्डन से, बगीचे से चुराया था। तो प्रलंबासुर किसको सूचित करता है, ये सूचित करता है पर स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति आकर्षण को। ये स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो काम है वो सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म स्तर में क्या है, लोगों की सराहना की उपेक्षा करना, दूसरा है कुछ मान सम्मान की उपेक्षा है। ग्रॉस सेक्स मतलब क्या है, ग्रॉस सेक्स मतलब स्थूल रूप में स्त्रियों का संग करना। सूक्ष्म सटल सेक्स मतलब क्या है, मान सम्मान की उपेक्षा रखना, मान सम्मान का इच्छा रखना, प्रतिष्ठा का इच्छा रखना, ये सूक्ष्म काम वासना है। तो ये प्रलंबासुर ये चीज को सूचित करते हैं। तो जैसे अब कल भी हमने चर्चा किया कि धेनुकासुर और प्रलंबासुर, ये दो ऐसे असुर है जो बलराम जी वध करते हैं। ओनली बलराम विल किल। बलराम जी कौन है, गुरु तत्व। ये बलराम, प्रलंबासुर और धेनुकासुर बलि महाराज के वंशज होने के नाते, वामन देव जिस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिया था बलि महाराज को, आज आपके वंशज में आने वाले असुरों को मैं वध नहीं करूंगा, तो वैसे ही ये प्रलंबासुर उनके वंशज में आने की वजह से कृष्ण ने प्रलंबासुर को वध नहीं किया। ये तो खैर है, लेकिन साथ साथ में बलराम जी ही ये प्रलंबासुर को क्यों वध करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर साधक के हृदय में ये जो अनर्थ है, किस प्रकार का अनर्थ है, पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण और सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति, सूक्ष्म काम वासना, जिस प्रकार मान सम्मान की उपेक्षा, प्रतिष्ठा की भावना, ये गुरु ही हमारे हृदय से निकाल सकते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार तेनुकासुर की वध के समय हमने कहा था कि शिष्य को गुरु के सामने ऐसा प्रस्तुत करना है ताकि गुरु पूर्ण तरीके से निश्चिंत होते हुए गुरु शिष्य के हृदय को ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वैसे ही एक शिष्य को गुरु के सामने ऐसा प्रकट करना हो ताकि गुरु हमारे अंदर हृदय में ये जो कामनाएं हैं उसको निकाल के फेंक सकते हैं। ये जो कामनाओं को परिस्थितियों के प्रति आकर्षण से मुक्त होने का स्वतः हमारे अंदर ही बल नहीं है। हम जितना गुरु के शरणागत रहेंगे, गुरु की सेवा में जितना नियुक्त रहेंगे, उतना ये जो अनर्थ है उससे मुक्त हो सकते हैं। ये जो इच्छा है फॉर प्रॉफिट, एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, ये पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त होने के लिए ऐसा बोला जाता है कि गुरु के सामने एक व्यक्ति को मूर्ख जैसा अपने आप को प्रस्तुत करना है। सारे दुनिया के सामने प्रचार करते हुए आप बड़ा बुद्धिमान बन सकते हो, लेकिन जब गुरु आते हैं उनके सामने एक मूर्ख बन के खड़े रहना। ये बात हमको ध्यान में रखना है कि गुरु हमसे ज्यादा हर चीज के बारे में जानते हैं। हमारे बारे में भी गुरु हमसे ज्यादा जानते हैं। अधिकांश लोग इस प्रकार की भावना रखते हैं कि मेरे बारे में मैं ही जानता हूं और इन सब चीज के बारे में मैं ही जानता हूं, लेकिन ये बात जो है बड़ा खतरा, गहरा अनर्थ है। अगर गुरु के सामने इस प्रकार अहंकार की भावना से कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है अपने आप को, इनका कोई रास्ता ही नहीं इन सब चीजों से बचने का, खास करके अहंकार से बचने का, एडोरेशन से बचने का, मान सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा से बचने का। तो इसलिए ये गुरु से डांट खाना ये बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरु का, जब आप गुरु आपको डांटते हैं। लेकिन साधक लोग, शिष्य लोग इस प्रकार सोचते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना किया, उतना किया, लेकिन गुरु कभी आके मुझे एक बार भी ऐसा नहीं बोला बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बात को भी स्वीकार करना चाहिए। जब आपको स्तुति किया जाता है, गुरु स्वयं आके बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल, तो ये समझना चाहिए कि वो सच्चा, ये झूठ बोल रहे। द ओनली टाइम योर गुरु इज स्पीकिंग लाइज इज वेन ही इज ग्लोरिफाइंग यू। तो अस्तित्व में ये सबसे खतरनाक समय है, जब कोई व्यक्ति आपको स्तुति करता है, आपका ग्लोरिफिकेशन करता है, उधर से भाग जाना चाहिए। ऐसे दो जगह है जहां से हमको भाग जाना चाहिए, जहां आपकी स्तुति सुनाई पड़ता है उधर से भाग जाना चाहिए, और जहां आपकी किसी और की निंदा सुनाई पड़ता है तो उधर से भाग जाना चाहिए। उस जगह हमको रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो बलराम जी को पूर्ण तरीके से, या गुरु को पूर्ण तरीके से स्वेच्छा देना चाहिए हमारे हृदय से ये जो कामना है उससे मुक्त हो जाए। ये प्रॉफिट, डिस्टिंक्शन, एडोरेशन, ये मान सम्मान प्राप्त करने की, मान सम्मान ये कम से कम एक अप्रिसिएशन, लोगों से एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन, सलाना को प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये इच्छा इतना खतरनाक इच्छा है कि ये इच्छा करते 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 जब व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके लिए दूसरों को निंदा करना शुरू करता है। जब अपराध करना शुरू करता है तुरंत उसको ये स्थूल कामना के अंतर्गत वो पड़ जाता है। तो ये प्रलंबासुर बहुत गहरा असुर है। क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर क्या कर रहा था, बलराम जी को वो कृष्ण और उनकी भक्तों से दूर लेके जा रहा था। और इसका मतलब क्या है, प्रलंब मतलब दूर लेके जाना, सेपरेशन, विप्रलंबा, जैसे प्रलंबा, प्रलंबा मतलब दूर, सेपरेशन। सो सेपरेशन मतलब विरह या दूर लेके जाना। तो बलराम जी को जिस प्रकार प्रलंबासुर क्या कर रहा था, मैं कृष्ण से दूर लेके जाऊंगा, तो वैसे ही क्या करता है प्रलंबासुर, या ये जो असुरी है, तत्व है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण या मान सम्मान के प्रति उपेक्षा, ये हमको भक्त कृष्ण और उनकी भक्तों की जो समाज से हमको दूर लेके जाता है। जो भक्त, जो साधक धीर, उनके अंदर ये सब भावना है, या जो कृष्ण से दूर जाना चाहता है, भक्तों का संग नहीं करना चाहता है, वो धीरे धीरे से अकेले अकेले रहना चाहता है, मंदिर आना कम कर देता है और भक्तों के साथ बैठना चाहता है, बैठना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब है ये उस भक्त के अंदर ये सब विचार है, इनके अंदर यही चीजें दूर लेके जाता है और कोई चीज दूर नहीं लेके जाता। इसलिए जो इनके अंदर इन सब विचार है, इन सब प्रकार के अनर्थ है, उनको बहुत सावधानी से कृष्ण का शरण लेना होगा, गुरु का खास करके शरण लेना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो गुरु का शरणागत है, कम से कम गुरु जब आते हैं उस समय सभी लोग आके बैठ जाते हैं, वो गुरु एकमात्र व्यक्ति है जो हमको भक्तों के साथ और कृष्ण के साथ जोड़ के रख सकते हैं। तो वो व्यक्ति कितना भी गाया गुजरा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गुरु का शरणागत है उसका कुछ होप है, अगर वो गुरु का शरण को त्याग कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, वो उनका कोई होप नहीं है। जैसे यस्या प्रसादान भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि, न गति कुतोपि, तो कोई गति नहीं, देयर इज नो होप। क्योंकि प्रलंबासुर किस कैसे कितना दूर किस तरीके से आके कैसे हमको भक्तों से दूर करता है और भगवान से दूर करता है हमको खुद को मालूम नहीं पड़ता है, ये प्रलंबासुर का बारे में थोड़ा सा है। तो भगवान ने और एक दावाग्नि को उन्होंने पी लिया था, वो है सेकंड फॉरेस्ट फायर। ये जो दावाग्नि, दो दावाग्नियों को भगवान ने दो बार यशोदामय को उन्होंने अपने मुंह के अंदर विश्व रूप को दिखाया था और दो बार दावाग्नि को उन्होंने पी लिया था। ही ड्रैंग द फॉरेस्ट फायर ट्वाइस। तो दूसरा फॉरेस्ट फायर ये हुआ था, ये ब्रजवासियों के सारे ब्रजवासियों के साथ नहीं हुआ था, बल्कि एक कृष्ण और बलराम जब गायों को चरने के लिए जा रहे थे, ये गाय घास की लालसा में वो क्या करने लगे, वो दूर चलने लगे, घास को चरते 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 दूर चलने लगे, उनको घास बहुत अच्छा लग रहा था, इतना दूर चले गए कि कृष्ण और बलराम और जितने भी ग्वाल बाल थे उनसे भी दूर चले गए। तो ये पता लगता है कि इससे कुछ आचार्य कहते हैं कि वैसे तो गायें भी दिव्य है, लेकिन इससे एक शिक्षा लेना चाहिए, घास की लालसा में भले ही वो कितने भी भक्त कृष्ण के भक्त क्यों ना हो, कितने भी भक्ति क्यों ना करता हो, घास की लालसा में कृष्ण से दूर जाना हमारे लिए खतरा है। तो कभी कभी भक्तों के मन में ऐसा आता है, मैं तो भक्ति कर रहा हूं लेकिन मुझे थोड़ा सा धन का संग्रह करना है, थोड़ा जरूरत से थोड़ा और ज्यादा चाहिए कि एक बार मैं इकट्ठा कर लूंगा इतना धन को और भक्ति करूंगा। तो कि ये घास यानी इंद्रिय विषय वस्तु या धन वगैरह उसकी लालसा, उसकी संग्रह के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचता है ठीक है मैं थोड़ा सा कृष्ण से दूर जाऊंगा, भक्तों के संग से दूर जाऊंगा, तो क्या होगा, उसका निश्चित रूप में कहता है वो कितना भी अच्छा भक्त क्यों ना हो, कृष्ण स्वयं गायों को देखभाल करते थे, गाय उनके लिए बहुत प्रिय थे, लेकिन गायों ने सोचा नहीं थोड़ा सा घास खाने के लिए मैं जंगल की ओर और अंदर जाऊंगा, घने जंगल में चले गए थे। जैसे घने जंगल में चले गए सारे जितने ग्वाल बाल थे वो घबरा गए, अरे हमारे गाय कहाँ चले गए, हमारे जीवन तो इसी के ऊपर चलता है। तो कृष्ण ने सोचा आप चिंता मत करो हम जाके गायों को ढूंढेंगे, और ढूंढते ढूंढते गए तो उधर कृष्ण जो है जोर से गायों को पुकारने लगे। तो जैसे गायों का एक एक नाम पुकार देते, जैसे कृष्ण का आवाज सुनाई पड़ा उन गायों को जो है थोड़ा सा शांतना मिला, हाँ कृष्ण हमारे लिए संरक्षण करने के आ रहे करके वो उधर से आवाज करने लगे, दोनों का आवाज मिला तो एक दूसरे पता लगे इधर है, तो कृष्ण जो है गायों के पास गए उनको फिर वापस लेके आ रहे थे। तो इससे पता लगता है कि जब भक्त घास की लालसा में, घास की लालसा मतलब कुछ और अन्य चीजों की लालसा के प्रति, भौतिक चीजों की लालसा से वो कृष्ण से दूर भी चले भी क्यों ना जाते हो, लेकिन कृष्ण जो है वो हमारा नाम पुकारते हैं, जिस प्रकार गायों का नाम पुकारे और पुकार के हमको फिर वापस उनके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, जब कृष्ण हमको पुकारते हैं, भक्त हमको पुकारते हैं, तब अस्तित्व में एक सावधानी दे रहे हैं कि आप दूर कहीं मत जाओ फिर वापस आ जाओ। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रखते फिर वापस आ जाना चाहिए। जो भौतिक चीजों की लालसा से कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, भक्तों से दूर जाते हैं, मंदिर में कम समय देते हैं, उस समय भक्तों का भी जिम्मेदारी बनता है, वैसे भक्तों को कम से कम एक बार फोन करना, उनका पुकारना, तब इतना बोलने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहे तो क्या कर सकते, लेकिन कम से कम कृष्ण ने जिस प्रकार गाय उनसे दूर जाने पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा ठीक है अभी जाने दो मुझे छोड़ के गए तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना स्वयं कृष्ण ने नहीं बनाया, ग्वाल बालों ने बलराम जी ने ऐसा सोचा नहीं। तो गाय जूर चले गए फिर भी ठीक है उनको वापस लेके आएंगे, उनको नाम पुकारते वो गाय उनको ऐसा लगा ठीक है हमने कुछ गलती कर दी, दूर चले गए फिर वापस वो जुड़ गए। तो कृष्ण जितने ग्वाल बाल सब लोग आके थोड़ा सा पानी पिए क्योंकि बहुत थके हुए थे, क्योंकि बहुत घबराहट में भी थकावट भी आता है, तो पानी जैसे पिए काली नदी से वो सब आ रहे थे, अचानक से एक असुर आया एक फॉरेस्ट फायर के रूप में, एक दावाग्नि के रूप में। ये दावाग्नि प्रलंबासुर का मित्र था क्योंकि अभी प्रलंबासुर का जो वध हो गया तुरंत उनको भी गुस्सा आया, प्रलंबासुर मेरा मित्र का वध हुआ तो मैं देखो सारे लोगों को मार दूंगा करके उन्होंने दावाग्नि के रूप में आया। और जैसे दावाग्नि भयंकर सा आग उत्पन्न हुआ तो सभी लोग घबरा गए, घबरा के फिर कृष्ण और बलराम के शरण में गए। तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपको रक्षा करूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन आप सब लोग आंख बंद कर लो, क्योंकि कृष्ण का एक घबराहट हो गया था कि ये ग्वाल बालों का भी उन्होंने बचाया, तो मित्र का ऐसा होता है कि अगर मैंने मित्र को कुछ सेवा किया कुछ वो उपकार किया वो मित्र भी वापस उनको वही उपकार देना चाहता है। तो अभी कृष्ण सोचने लगे अभी ये ग्वाल बालों को उनकी गायों को मैंने बचाया है, तो अगर मैं उनके सामने उनकी दृष्टि के सामने अगर मैं दावाग्नि को मैं पी लूंगा तो क्या होगा, वो लोग सोचेंगे कि कृष्ण अरे वो खतरे में है, वो आग सब उनके पास जा रहा है, उन्होंने अभी हमको बचाया तो मैं भी उनको बचाऊंगा करके वो भी दावाग्नि के पास आके जल जाएंगे करके उनको मालूम था। उन्होंने इसलिए क्या किया, सारे ग्वाल बालों को बोला कि आप आंख बंद कर लो। तो सारे ग्वाल बालों ने सोचा अरे हम आंख बंद कर लेंगे तो क्या होगा, कृष्ण का क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा। तो वो लोग विचार करने लगे तो अग्नि तो भयंकर है, तो ये ग्वाल बाल ने कहा तो चिंता मत करो कृष्ण के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, आपको मालूम नहीं जब कृष्ण का जन्म हुआ था गर्गाचार्य आए थे, गर्गाचार्य ने क्या कहा कि ये जो बालक है ये आप लोगों को बहुत सारे खतरे से बचाएगा, आपको विश्वास नहीं है कृष्ण के पास जो है नारायण के द्वारा दिया गया बहुत सारे शक्तियां हैं, उनके पास बहुत सारे जादू की है, उनके पास योग शक्तियां हैं, वो योग शक्ति के द्वारा ये सब बुझा देंगे। ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी का ये योग शक्तियां जो है जब कोई और व्यक्ति देखता है योग शक्तियां काम नहीं करता, इससे कृष्ण बोल रहे हैं अपनी योग शक्ति को यूज करने की इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम आंख बंद कर लेंगे तो अगर कोई जब देखते नहीं है तब कृष्ण के पास योग शक्तियां आ जाता है तब ये सब जो है बुझा देते हैं। तो सब लोग बोला हाँ हाँ हम आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद कर लिए। जैसे उन्होंने आंख बंद किया तो क्या हुआ, सारा जो दावाग्नि है कृष्ण ने उन्होंने पी लिया। तो इस प्रकार ये दूसरा दावाग्नि ये क्या है, ये एक बाहर से यानी असुरी सिद्धांत के द्वारा वैष्णव सिद्धांत के ऊपर प्रभाव या प्रहार, जो सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है वो वैष्णव सिद्धांत को खतरा पहुंचाता है, तो इसको सूचित करता है। जैसे वैष्णव सिद्धांत है, कृष्ण भावना का शुद्ध सिद्धांत है, अगर कोई व्यक्ति इसको अध्ययन कर रहा है उसी समय कोई और आके कुछ मायावाद सुना देगा, कुछ नास्तिकता का दर्शन सुना देगा, उसकी वजह से ये जो वैष्णव है इनको है ऐसा लगता है कि अरे ठीक है वो भी अच्छा है उसको भी जाके सुनना चाहिए, अरे ये भी पढ़ना चाहिए ये भी जानना चाहिए, अगर वो सब जानेंगे नहीं तो कैसे है, अरे हम देखेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा सही है, तो इसका कार भक्तों के मन में ये भी विचार आता है। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको भक्ति सामने उनका अनुसार बहुत ज्यादा किताबों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों इसके द्वारा एक खतरा है तो हमारा मन जो है विचलित हो सकता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को संरक्षण करते हैं कृष्ण, कैसे संरक्षण करते हैं, बाकी सब जितने भी गलत सिद्धांत है न्याय वैशेषिक सांख्य और जितने भी मायावाद जितने सिद्धांत है वो सब सिद्धांत तथाकथित जो धर्म धार्मिक सिद्धांत है उन सब सिद्धांतों से कृष्ण हमको बचाते हैं। तो इससे सारे भक्तों को भगवान के सामने प्रार्थना करना है और साथ साथ में जो गलत वैष्णव सिद्धांत है गलत सिद्धांतों को नाश करने का हमको शक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण का सहारा लेना होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे अलस, सिद्धांत का बल को सिद्धांत को मैं सीखूंगा नहीं, मैं ऐसे भक्ति करूंगा मुझे कोई जरूरत नहीं है शास्त्र का अध्ययन करूंगा, और इस प्रकार सोचता है कि ये निश्चित रूप में जो दावाग्नि है वो उसको भस्म कर लेगा। इसलिए भगवद गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अंदर व्यक्ति को निपुण होना आवश्यक है। अगर वो निपुण नहीं रहेगा और सिद्धांत के प्रति उनकी श्रद्धा भावना नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये बाकी सब जितने भी खतरनाक सिद्धांत है जो हमारी भक्ति को नाश कर सकता है वो हमारे हृदय में आके बस जाएंगे। हम सोचेंगे हाँ ये टीवी में ये साधु आ रहा है, हाँ ये भी बहुत अच्छा कहते हैं और ये भी सुंदर कहते हैं, वो दाढ़ी वाला भी अच्छा कहता है, वो ये बाबा भी अच्छा है, वो संत भी अच्छा है, ये संत भी अच्छा है। ऐसा सुनते सुनते हमारे अंदर जो शुद्ध कृष्ण भावना के सिद्धांत है वो नष्ट हो जाता है, वो सब जल जाता है। असत में बाकी जितने भी ताकत सिद्धांत है वो आग के बराबर है, वो अग्नि के बराबर है, वो हमारी जो शुष्क कृष्ण भावना है उनको जला देंगे। तो इसलिए भक्त को सशक्त होना चाहिए पहचानने के लिए कि ये दावाग्नि, ये गलत सिद्धांत, ये गलत सिद्धांत है, इससे हमको दूर रहना है और हमारे कृष्ण भावना का सिद्धांत है शुद्ध सिद्धांत, उसको बचा के रखना है करके ये ध्यान में भक्तों को रखना चाहिए। इससे हम ये जो दूसरा दावाग्नि से बचने के लिए कृष्ण हमको मदद करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो दावाग्नियों का, फॉरेस्ट फायर को किस प्रकार कृष्ण खा लेते उसको श्रवण किया, और बाद में हमने ये भी श्रवण किया प्रलंबासुर के बारे में। ये तीन प्रकार के असुर, तीन प्रकार के नस्त्र पहला दावाग्नि सूचित करता है कि वैष्णव के झुंड के बीच में झगड़े को सूचित करता है, जिसके द्वारा वैष्णव समाज का खतरा किसे, अंदर ही अंदर से खतरा। जो दूसरा दावाग्नि जो है बाहर के असुरी तत्वों के द्वारा वैष्णव समाज को खतरा, और प्रलंबासुर जो है हमारे हृदय में जो काम है और लालसा है, सराहना का, दूसरों से सराहना प्राप्त करने की लालसा को सूचित करता है। कृष्ण किस प्रकार ये दोनों दावाग्नियों को पी लेते हैं और किस प्रकार गुरु का शरण ग्रहण करने, गुरु के सामने मूर्ख जैसे प्रस्तुत करने से, गुरु का पूर्ण रूप से सेवा करने से ही हम ये काम स्त्रियों के प्रति आकर्षण को और मान सम्मान प्राप्त करने की जो लालसा से हम मुक्त हो सकते हैं। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन।
Say there are different organizations, like one is ISKCON and another is something else, but they are also worshipping Krishna and they are also following the four regulative principles.
Krishna ka sabhi log puja kar sakte hai, bhajan kar sakte hai, shuddh bhakti ke angon ko sabhi log swikar kar sakte hai, alag alag organization sab kuch ho sakte hai, koi problem nahi hai। लेकिन हमने ये बात कहा कि जो जब शुद्ध भक्त, दो शुद्ध भक्त, उन दोनों के बीच में मतभेद होता है, ये कनिष्ठ भक्त जो है वो सोचता है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मैं ये पार्टी में जाएगा, तुम ये पार्टी का है, ये दोनों झगड़ा करेंगे। वो सोचते हैं कि वो भी झगड़ा कर रहे हैं, वो भी झगड़ा कर रहे हैं, मैं भी झगड़ा, असल में उन दोनों का झगड़ा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी समय उनके अपने जो गुरु भाई है उनको, खास करके एक महाराज थे बान महाराज करके, उनको बताते हैं कि ये मुझे मदद नहीं कर रहा, उनको थोड़ा सा उन दोनों के बीच में मतभेद था, तो सारे शिष्यों के पता लगा, तब वो भी उनको निंदा करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आई कैन से बिकॉज इज माई गॉड ब्रदर बट यू कैन नॉट से, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी का निंदा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और धर्म का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी जब विदेश में चर्चा कर रहे थे तो एक व्यक्ति आके कहा कि प्रभु आई एम क्रिश्चियन, आप ये सब मुझे मत सिखाओ, मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन धर्म को पालन करता हूं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि यू आर नॉट ए गुड क्रिश्चियन, तुम अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो। तो वो घबरा गया, अरे अगर आप अच्छे क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियनिटी के अनुसार क्या कहा गया है, दाउ शैल नॉट किल, तुम तो नॉनवेज खाते हो, तो अच्छा क्रिश्चियन बनो। तो प्रभुपाद ने तक कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस विल हेल्प यू टू बिकम ए गुड क्रिश्चियन। तो ही डिड नॉट क्रिटिसाइज, दैट इज हाउ ए प्योर डिवोटी फंक्शंस। ये कनिष्ठ के स्तर में आता है, कनिष्ठ का ये कनिष्ठ भक्तों में ये विचार रहता है। वो ये जानते नहीं है कि ये सब बातों को विचार में नहीं रखते हुए वो निंदा करते हैं, को हमारा ग्रुप जो है ये ऐसा है, ये आपका ये है, तो दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग ईच ग्रुप। तो ये निंदा करते करते मैंने कहा कि ये भगवान को भी निंदा कर ले लेंगे, ये साक्षात मैंने देखा है। एक चार पांच भक्तों का एक ग्रुप था, वो बार बार निंदा करते थे। एक और एक ग्रुप एरिक महाराज के शिष्यों को बार बार निंदा करते थे, खास करके उनका ये निंदा था कि आप सब अनपढ़ हो, आपको कोई कल्चर नहीं है, ये नहीं है, आपका ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये है और हमारा देखो। देवर डिस्कसिंग, उन दोनों के बीच पे कंपैरिजन चल रहा था, वो कंपेयर करते थे हमारा इसका। करते करते वंतता ही इतना तक आ गया कि देखो आपका विग्रह ये है, आप हमारा विग्रह देखो, हम जिस विग्रह को पूजा करते हैं, हम जिस डेटी से अच्छा अटैच है वो और सुंदर है, इनका जो डेटी से क्या है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं इधर भगवान है। ऐसे ऐसे बातें मैंने सुना, इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी सन्यासी हो, मायावादी कुछ भी, कोई भी सन्यासी, क्योंकि वो सन्यासी है तुरंत प्रणाम करना चाहिए, ये वैदिक एटिकेट है। जैसे कुंभ मेला में आप जाएंगे, बहुत सारे सन्यासी है, सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो सन्यासी है, वो भी आश्रम में है। ये सन्यासी देन ही शुड बी रेस्पेक्टेड, ये साधु का लक्षण होता है, कोई भी सन्यासी हो रेस्पेक्टेड। ये बात हमने इतना अपने सीखना चाहिए। एक बार एक धर्म सम्मेलन में गए थे, तो उधर हम पहुंचे, थोड़ा लेट में पहुंचे, मैं गया उधर के जो है एक रामकृष्ण मठ के एक कुछ ब्रह्मचारी आए थे और उनके जो हेड है जो भी है बड़ा बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत तेज वगैरह था वहां। जैसे मैं पहुंचा तो उनका लेक्चर चल रहा था, 15-20 मिनट का बोलना था उनको, बोल के वो जब आ रहे थे तब मैं वापस स्टेज में जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पूरा साष्टांग प्रमाण, पांच के पांच लोग सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तब मैं भी ऐसे प्रणाम करके निकला। तो उन्होंने, वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि ए इस्पान का है, हम ये है वो है, झगड़ा नहीं किया, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द एटिकेट, क्योंकि उनको मालूम है साधारण जनता के हिसाब में जो लाल पहना वो सन्यासी है, दैट इज देयर, उनको मालूम नहीं ना कि ये ब्रह्मचारी है सन्यासी, अभी सन्यास ग्रहण नहीं किया, कुछ समय के बाद इस्कॉन में बहुत देर के बाद सन्यास मिलता है, वो सब दे डोंट नो। तो जो लाल पहना वो सन्यासी है, देर फॉलोइंग द कल्चर, दैट आई सी एनी सन्यासी आई विल पे ओबिशंसिस, आई विल पे माय रेस्पेक्ट्स, दे आर फ्लैट। सो वी शुड ऑल्सो हैव द सेम एटीट्यूड, दैट डजंट मीन हम उनकी सिद्धांत को हम स्वीकार करेंगे और उनको जाके उधर जाके स्टेज के ऊपर उनका निंदा करेंगे। अगर वो लोग आपके पास आएंगे सीखने के लिए, तब उनका सिद्धांत को खंडन करके उनको समझा सकते हो। जब वो धर्म सम्मेलन में उनको आपको 20-25 बोलने के लिए दिया गया, आप उनको 20, तो आप अपना सिद्धांत पेश करो। उधर परमता खंडना ये नहीं करना चाहिए, परमता खंडना करने का समय काल पात्र होता है, देयर इज अ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस टू डू परमता खंडना। अगर वो सम्मेलन ही परमता खंडन के ऊपर है, शास्त्रार्थ के ऊपर है, तब आप कर सकते हो, लेकिन वो जो सेमिनार है, वो जो सम्मेलन है, उसमें आप क्या कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, दैट इज व्हाट इज बीन, सो यू शुड डू दैट जॉब, isn't it? Then come there. तो प्रभुपाद जी जब वो मायावादियों का ये जापान में कहां था, कुछ एक जगह था, तो मायावादी लोग अपना लेक्चर देना शुरू किया, तो उससे प्रभुपाद जी ने बोला स्टार्ट कीर्तन, सब लोग कीर्तन करने लगे, क्योंकि उस समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये हमको निमंत्रण दिए, हमारा प्रोग्राम है, हमको निमंत्रण दिए, एक्चुअली उनको ये बात नहीं था कि सभी मत वाले आने वाले हैं, इट वॉज नॉट नोन टू हिम लाइक दिस, अगर ऐसा है तो आप जाओ ही मत, डोंट गो देयर, इजंट इट, डोंट डू जस्ट गो टू क्रिटिसाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी एट एनी रिलीजन। इफ यू रियली वॉन्ट क्रिटिसाइज, मतलब परमता खंडन, उनका खंडन करने का तरीका और जगह भी, जैसे कोई आएंगे इधर, वो आके आपसे पूछेंगे कि हम तो उधर के हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि क्या है, आपसे एक शिष्य के रूप में आए, देन यू कैन से। जैसे कुछ लोगों ने हमको कहा था कि आप तो बार बार उडुपी जाते हो, उडुपी जो मध्य संप्रदाय में जाते हो, आप जाके उनको क्यों नहीं बोलते हो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ऐसा उनको उनके पास जाके क्यों बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो। हमने उनको कहा कि मैं वो बात तभी बोलूंगा उनको जब वो मंदिर में आएंगे, तब हम हमारा सिद्धांत क्या है उनके सामने पेश करेंगे। मैं उनके पास जाऊं और जबरदस्ती बोलो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य नहीं, जब मैं उनके पास जाऊंगा, वो सन्यासी है, प्रणाम करके मैं पूछूंगा मध्वाचार्य का गुणगान सुनाइए हमको। आई विल नॉट गो एंड से ओ आप जब तक नित्यानंद प्रभु का सेवा नहीं करोगे, राधा रानी का कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो। आई डोंट हैव द राइट टू से दिस, दो इट इज ट्रू, आई विल नॉट से इट देयर। मैं उनको कहूंगा नहीं, निंदा नहीं करूंगा उनका, उनका गुणगान देखूंगा, वो कितने अच्छे सन्यासी है, वो बाल सन्यासी है, नैष्ठिक सन्यासी है, उनका जन्म से उनको कभी तक एक बार भी उन्होंने वीर्य खसखरित नहीं किया है, वैसे सन्यासी है, तो उनका गुणगान मैं करूंगा। जब मैं उनको पास जाऊंगा, वो बोलेंगे मुझे मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के अनुसार जब तक आप भीम का कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो। बट वेन ही वॉन्ट्स टू नो वॉट इज चैतन्य फिलॉसफी, ऐसा हुआ तो उधर के जो एक सन्यासी ने पूछा कि आप इतना प्रचार कर पाते हो, इतना भगवदगीता इतना क्या करते हो आप लोग, तो तब मैंने उनको कहा कि ये सब चैतन्य महाप्रभु कृपा से हो रहा है क्योंकि उन्होंने पूछा, ही वॉन्टेड टू नो, देन आई टोल्ड तब हाँ प्रभुपाद जी बहुत वरिष्ठ है, इतना महान है कि जब वो गए विदेश में, कि वो विदेशी जो प्रदूषण है उससे प्रभावित नहीं हो, लेकिन वो उनकी शुद्धता इतना है कि उनको सारे लोगों को प्रभावित किया, तो दे साइड ग्लोरिफाइंग प्रभुपाद। अगर मैं बोलूंगा नहीं ये हमारा सिद्धांत ये है, तब वो डजंट वर्क लाइक दैट, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, सो यू शुड नो व्हाट टू स्पीक वेयर एंड हाउ, बिना क्रिटिसाइज करते हुए, बिना लोगों को दुख पहुंचाए हुए बात करना चाहिए। जैसे कल हम गए थे एक प्रोग्राम में, ये उल्लेख करना बहुत जरूरी है, तो वो प्रोग्राम था, वो आए थे अस्तित्व, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं आए थे, कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए नहीं आए थे, उनको ऐसा था कि एक गेट टुगेदर हो जाता है कंपनी लोगों का, वही उद्देश्य आए थे, और कुछ ठीक है एक मित्र ने बुलाया है वो आएंगे, तो ऐसा आए थे। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का चला, सब कुछ चलने के बाद अंत में एक लड़के ने जो एक प्रश्न पूछा, प्रश्न था कि मैं अच्छा कार्य करने जाता हूं, तो वो कोई उनको सलाह था नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करता है, इतना रुकावटें आते हैं, इतना मुश्किल आते, परेशानियां होता है अच्छा कार्य करने। अगर वही भक्त इधर पूछता इसी माहौल में, मैं तुरंत बोलता अच्छा कार्य क्या होता है मालूम है, अच्छा कार्य मतलब हरिनाम संकीर्तन, पहले तो तुम तो कर नहीं रहे हो और तुम खुद अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, तो दूसरों को क्या अच्छा कर दोगे, खुद के पास 100 रुपए को तभी दोगे। अगर ये प्रश्न इधर पूछा होता भागवतम क्लास में, वो जवाब दे देता। जैसे उन्होंने वो प्रश्न उधर पूछा उस माहौल में, तुमने उसका जवाब दिया कि ये सही बात है कि आप जब भी अच्छा कार्य करने जाओगे तो दो चीजें होता है, एक है आपको कोई सहयोग नहीं देगा, दूसरा ये पूरा बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, दूसरा ये भौतिक जगत जो है सारे दुखों से भरा हुआ है, सारे गंदे गलत चीजों से भरा हुआ है, तो अच्छा कार्य करना बहुत मुश्किल है। जैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में आप पानी ढूंढने जाओगे, बहुत मुश्किल है, मिलेगा नहीं, क्योंकि उधर पानी नहीं है, तो इस जगत में कोई अच्छाई नहीं है, और उधर अच्छाई करने जाओ तो मुश्किलें होगा और कोई साथ भी नहीं देगा। तो हमारा जवाब उस प्रकार था, हाँ तो समझ गया, लेकिन हमने जो भी कहा वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं कहा, शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान बताते हैं संसार जो है दुखकाल है, शाश्वत है, वही बात कहा। और इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं, वो भी कहा। क्योंकि कृष्ण से विमुख होकर इधर आए हैं, मन में वो चल रहा है लेकिन बाहर बोला कुछ और। तो इसलिए समय काल पात्र के अनुसार हमको किसी को निंदा नहीं करते हुए, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट फायर है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम जब कोई किसी कार्य करते हैं जिसके द्वारा ऐसी प्रस्तुत करना चाहिए समभाव समदृष्टिकोण से जिसके द्वारा वैष्णव समाज का संरक्षण हो, कृष्ण भावना का प्रचार का संरक्षण हो। अब प्रचार करने के लिए गए उल्टा इफेक्ट हो रहा है तो प्रचार थोड़ी ना हुआ है कि नहीं। आप कोई कंपनी में बुलाया आपको सेमिनार देने के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर, आप गए जाके बोले कि ओ प्रभुपाद जी ने सिखा इस कंपनी इट इज ऑल उग्र कर्मा। यू शुड नॉट से दैट। अगर वही बोलना है तो आप मंदिर में बोलो, जब वो लोग मंदिर में आएंगे तब बोलो उग्र कर्म। Isn't it? So they should, you should know what to do where. ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक, कंद्रा श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।
One clarification, like you said, as a society, we should not be going out for settling our disputes. And in Bangalore case, why we are taking?
That is the biggest problem. That is why he is hated in this car. I think if there is some dispute, we'll let us solve within ourselves. But he went out.